नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान।
और मैं हूं आपका साथी मेजबान। हम यहां विचारों की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाते हैं।
हाँ, और कोशिश करते हैं जरूरी किताबों और आइडियाज का सार आप तक पहुंचाने की।
बिल्कुल।
तो आज हमारे हाथ लगी है एक बड़ी ही दिलचस्प किताब, क्रिस गिल्बो की $100 स्टार्टअप।
हाँ, नाम सुनकर ही थोड़ा लगता है कि क्या सच में
है ना, मतलब सिर्फ $100, ये हुए करीब 7-8 हज़ार रुपए।
इतने में एक कामयाब बिजनेस, ये कैसे मुमकिन है?
और यही सवाल मुझे लगता है इस किताब को आज के समय में बहुत बहुत जरूरी बना देता है।
सही कहा, क्योंकि देखिए ना, एक तरफ तो वो पारंपरिक नौकरियों वाली बात है, थोड़ी अनिश्चितता बढ़ रही है। दूसरी तरफ लोग ज्यादा आजादी चाहते हैं, अपने काम पर, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहते हैं।
बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी ने भी तो कितने नए दरवाजे खोले हैं छोटे उद्यमियों के लिए।
हाँ, वो तो है, लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है, क्या बिना ढेर सारे पैसों के या वो भारी भरकम बिजनेस प्लान के बिना भी
शुरुआत हो सकती है?
हाँ,
तो क्रिस गिल्बो कहते हैं हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और ये सिर्फ मतलब हवा हवाई बातें नहीं है।
नहीं, पहले लेखक को ही देख लें। क्रिस गिल्बो कोई टिपिकल बिजनेस गुरु टाइप नहीं है।
अच्छा, कैसे?
वो खुद एक उद्यमी है, ब्लॉगर हैं, और एक क्या कहूँ, जुनूनी यात्री हैं।
यात्री?
हाँ, सोचिए, 35 साल की उम्र तक दुनिया का हर देश घूम लिया उन्होंने,
अरे वाह।
और ये सब किसी रेगुलर 9 से 5 नौकरी के बिना, अपने छोटे छोटे बिजनेस वेंचर्स से।
तो मतलब वो जो कह रहे हैं वो उन्होंने खुद जिया है।
बिल्कुल, वो उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं जिनकी बात वो करते हैं, आजादी, मतलब का काम और पारंपरिक रास्तों से हटकर चलना।
पर किताब सिर्फ उनके अपने अनुभव पर तो नहीं होगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाकायदा रिसर्च की है, करीब 1500 लोगों का सर्वे किया।
1500 लोग? कौन थे ये लोग?
ये वो लोग थे जिन्होंने $100 या उससे भी कम में बिजनेस शुरू किया था और सालाना कम से कम $50,000 कमा रहे थे।
$50,000 $100 से शुरू करके? कमाल है।
हाँ, और इनमें से 50 लोगों की कहानियां तो केस स्टडी की तरह किताब में दी भी गई हैं।
तो मतलब अनुभव भी है और डेटा भी,
और उनका नजरिया भी थोड़ा अलग है। वो अरबों खरबों डॉलर की कंपनियों की बात नहीं करते।
तो फिर
उनका फोकस है लाइफस्टाइल बिजनेस पर।
लाइफस्टाइल बिजनेस, ये क्या होता है?
मतलब ऐसा बिजनेस जो आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे, जो आपको वो करने की आजादी दे जो आप असल में करना चाहते हैं।
अच्छा, पैसे से ज्यादा आजादी पर जोर।
हाँ, और वो बिजनेस को बड़े जोखिम वाले खेल की तरह नहीं देखते, बल्कि छोटे कम रिस्क वाले प्रयोगों की एक सीरीज की तरह।
ये सुनने में कम डरावना लगता है।
बिल्कुल।
तो संक्षेप में कहें तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी नौकरी से हटकर कुछ करना चाहते हैं।
हाँ, पर जिन्हें लगता है कि भाई पैसा नहीं है, या कोई MBA की डिग्री नहीं है, या वो मोटा सा बिजनेस प्लान नहीं है।
बिल्कुल, ये किताब उस सोच को ही चुनौती देती है कि बिजनेस शुरू करना कोई बहुत बड़ा डरावना काम है जिसके लिए बहुत सारी तैयारी चाहिए।
सही। इसका जो मुख्य आइडिया है वो ये है कि आज के समय में कोई भी, मतलब कोई भी,
हाँ,
अपने किसी शौक को या हुनर को एक फायदे वाले बिजनेस में बदल सकता है,
और अक्सर शुरुआत बहुत ही कम पैसों से हो सकती है।
$100 या उससे कम में।
हाँ,
लेकिन इसमें एक पेच है। सफलता का राज सिर्फ जुनून नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है? यहीं से शायद किताब की गहरी बातें शुरू होती हैं।
हाँ, पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो गिल्बो कहते हैं वो है वैल्यू पर ध्यान देना, मूल्य पर।
मूल्य, वैल्यू।
उन्होंने इसे बड़े मजेदार तरीके से कहा है, गिव देम द फिश,
उन्हें मछली दो। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि ग्राहक आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते, वो असल में एक समाधान चाहते हैं, एक हल। अगर किसी को भूख लगी है, उसे मछली चाहिए, तो उसे तुरंत मछली चाहिए। उसे मछली पकड़ना सीखने का लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं चाहिए उस वक्त।
हाँ, बात तो सही है।
तो बिजनेस का काम है ग्राहक की उस फौरी जरूरत को पूरा करना,
यानी फोकस इस पर कि ग्राहक को क्या मिलेगा, न कि हमारा प्रोडक्ट क्या है।
बिल्कुल, जैसे कोई ड्रिल मशीन नहीं खरीदना चाहता।
हाँ हाँ, उसे दीवार में छेद चाहिए।
एग्जैक्टली। तो बिजनेस को उस छेद पर फोकस करना चाहिए, ड्रिल की तकनीकी बातों पर नहीं।
ये सोच तो मार्केटिंग में भी बहुत काम की है।
यहीं पर गिल्बो का एक और कोट जुड़ता है, मूल्य तब बनता है जब कोई व्यक्ति कुछ उपयोगी बनाता है और उसे दुनिया के साथ साझा करता है।
कितना सरल और पावरफुल विचार है।
हाँ, मतलब बिजनेस का मतलब है कुछ काम का बनाना और दूसरों तक पहुंचाना। सिंपल।
ठीक है, मान लिया कि वैल्यू बनाना सबसे जरूरी है, लेकिन किस चीज पर बिजनेस बनाएं, आइडिया कहां से लाएं, यहां बहुत लोग अटकते हैं।
सही कहा, और यहीं पर गिल्बो का कन्वर्जेंस मॉडल काम आता है।
कन्वर्जेंस मॉडल?
हाँ, उन्होंने इसे मजेदार नाम दिया है, फॉलो योर पैशन, मे बी।
मेबी ये शायद क्यों जुनून फॉलो नहीं करना
करना है, पर सिर्फ जुनून काफी नहीं है। गिल्बो कहते हैं कि सबसे बढ़िया बिजनेस आइडिया वहां मिलता है जहां तीन चीजें मिलती हैं।
तीन चीजें कौन सी?
एक, आपका जुनून या आपकी रुचि।
दूसरा,
आपका हुनर या कौशल।
और तीसरा,
बाजार की जरूरत, मतलब ऐसी चीज जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हों।
अच्छा, तो जुनून, हुनर और बाजार की जरूरत।
हाँ, इसे वेन डायग्राम की तरह सोचिए, जहां ये तीनों गोले मिलते हैं ना, वही आपकी सही जगह है बिजनेस के लिए।
इसका कोई उदाहरण है किताब में?
हाँ, कई हैं, जैसे गैरी लिफ का जिक्र है, उन्हें फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स जमा करने का जुनून था।
अच्छा,
उन्होंने इसे बिजनेस बना लिया। वो दूसरों को सिखाते हैं कि कैसे कम पैसों में या मुफ्त में यात्रा करें, मतलब ट्रैवल हैकिंग।
अरे वाह, तो यहाँ जुनून, माइल्स, कौशल, सिस्टम समझना और जरूरत, सस्ती यात्रा, तीनों मिल गए।
बिल्कुल, इसी तरह एक ब्रेट कीली का उदाहरण है। उन्होंने एवरनोट ऐप के एडवांस्ड यूजर्स की मदद के लिए एक गाइड लिखी और बेची। वो उस ऐप के एक्सपर्ट थे।
समझ गई, तो जुनून जरूरी है पर अकेले काफी नहीं, उसे हुनर और मार्केट की जरूरत से जोड़ना होगा।
हाँ,
ये तो हुई आइडिया की बात, पर आइडिया आने के बाद क्या? बहुत लोग, जैसा मैंने कहा, यही अटक जाते हैं प्लानिंग में, सोचने में।
और यहीं पर गिल्बो का सबसे, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी विचार आता है, एक्शन पर जोर। लॉन्च नाम का अध्याय है।
लॉन्च मतलब शुरू कर दो।
हाँ, वो कहते हैं आपको बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं है, आपको काम पर लगने की जरूरत है।
लेकिन बिना प्लान के, ये थोड़ा अजीब नहीं? हमेशा तो यही सुना है कि पहले पूरा प्लान बनाओ।
गिल्बो पारंपरिक, वो मोटे मोटे बिजनेस प्लान के सख्त खिलाफ हैं।
क्यों?
वो कहते हैं ये अक्सर टालम टोल का बहाना बन जाते हैं। सोचते रहो, प्लान बनाते रहो, शुरू कभी मत करो।
हाँ, ये बात तो है।
इसकी जगह वो सुझाते हैं एक पृष्ठ बिजनेस प्लान।
एक पेज का प्लान। उसमें क्या होगा?
बस कुछ मुख्य सवालों के जवाब। क्या बेचोगे, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, पैसे कैसे मिलेंगे, ग्राहकों तक कैसे पहुंचोगे।
बस।
हाँ, और
फिर लॉन्च।
लॉन्च, इसे वो कहते हैं रेडी फायर एम अप्रोच।
रेडी फायर एम, ये तो उल्टा लग रहा है। पहले निशाना साधते हैं फिर फायर करते हैं ना?
हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, पर इसका मतलब है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो।
अच्छा,
अपना प्रोडक्ट या सर्विस बाजार में उतारो, भले वो पूरी तरह परफेक्ट ना हो।
पर इससे मतलब गड़बड़ होने का डर नहीं? क्लाइंट्स नाराज हो गए तो?
थोड़ा जोखिम तो है, पर गिल्बे का तर्क है कि असली ग्राहकों से जो फीडबैक मिलता है,
हाँ,
वो किसी भी काल्पनिक प्लान से हजार गुना ज्यादा कीमती होता है।
मतलब आप उस फीडबैक के आधार पर सुधार कर सकते हैं।
बिल्कुल, ये आपको एनालिसिस पैरालिसिस से बचाता है, मतलब सोचते सोचते ही रह जाना और कभी शुरुआत न कर पाना।
ये टर्म तो सुना है, एनालिसिस पैरालिसिस।
हाँ, किताब में एक लाइन है, योजना और कर्म के बीच लड़ाई में कर्म लगभग हर बार जीतता है,
एक्शन जीतता है। ये बात ध्यान रखने वाली है।
बिल्कुल,
तो आइडिया मिल गया, एक्शन भी ले लिया, लॉन्च कर दिया, अब ग्राहकों को कैसे लाएं, खासकर जब बजट कम हो?
हाँ, यहीं पर वो द जेंटल आर्ट ऑफ हसल वाली बात आती है।
हसल, इसका मतलब क्या है यहाँ?
यहाँ हसल का मतलब वो धक्का मुक्की या जोर जबरदस्ती वाली मार्केटिंग नहीं है।
तो फिर
इसका मतलब है लगातार रचनात्मक तरीके से अपने काम को लोगों तक पहुंचाना, बिना बड़े मार्केटिंग बजट के।
अच्छा, बिना पैसों के मार्केटिंग।
हाँ, ये असल में मददगार होने और रिश्ते बनाने के बारे में है।
जैसे?
जैसे आप उपयोगी कंटेंट बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, दूसरे छोटे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या फिर अपने ग्राहकों को इतना अच्छा अनुभव दें कि वो खुद ही आपकी तारीफ करें, वर्ड ऑफ माउथ, ये सब हसलिंग है।
समझ गए, और अपने ऑफर को, मतलब जो आप बेच रहे हैं, उसे आकर्षक बनाना भी तो जरूरी होगा।
हाँ बिल्कुल, एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे ग्राहक मना ना कर पाए।
ये कैसे बनता है?
फिर वही बात, ग्राहक को मिलने वाले फायदे पर फोकस करके।
अच्छा, घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है।
हाँ, आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी कौन सी बड़ी समस्या हल करेगा या उनकी कौन सी इच्छा पूरी करेगा। आप क्या गारंटी दे सकते हैं, उनकी जो शंकाएं हैं उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। जब आप इन सवालों का जवाब साफ साफ देते हैं तो आपका ऑफर अपने आप आकर्षक बन जाता है।
तो अगर हम इनसे बातों को समेटें, तो कुछ मुख्य संदेश या थीम्स क्या निकल कर आते हैं इस किताब से?
पहला तो मुझे लगता है ये कि असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है।
हाँ, बल्कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता हासिल करना है।
दूसरा, वही कन्वर्जेंस वाली बात, सफल बिजनेस के लिए जुनून, कौशल और बाजार की जरूरत का मिलना जरूरी है।
ये आइडिया खोजने का एक प्रैक्टिकल तरीका देता है।
हाँ, तीसरा और शायद सबसे अहम, एक्शन, कर्म, योजना से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो, छोटे कदम उठाओ।
हाँ, कुछ न करने का जोखिम अक्सर कुछ करने के जोखिम से ज्यादा बड़ा होता है।
ये बहुत बड़ी बात है। और
चौथा, ये किताब बिजनेस या उद्यमिता को बहुत सरल बना देती है। कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं, बस सीधी करने लायक सलाह।
हाँ, पढ़ने में मुश्किल नहीं लगते।
और पांचवा संदेश, जो मुझे बहुत पसंद है, संसाधनशीलता, यानी आपकी जुगाड़ करने की क्षमता, आपकी रचनात्मकता।
हाँ।
वो संसाधनों यानी पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसे की कमी अब बिजनेस शुरू न करने का बहाना नहीं हो सकता।
ये सारे विचार तो भारत जैसे देश के लिए कितने कितने प्रासंगिक लगते हैं।
बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं आजकल कैसे साइड हसल का कल्चर बढ़ रहा है।
हाँ, लोग नौकरी के साथ साथ कुछ न कुछ अपना कर रहे हैं।
और छोटे शहरों में, कस्बों में इंटरनेट की मदद से लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो ये कम लागत वाला मॉडल यहाँ बहुत फिट बैठता है।
किताब में कुछ पंक्तियां भी हैं जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ, काफी हैं, जैसे वो वाली, जादुई सूत्र है जुनून या कौशल प्लस उपयोगिता इज इक्वल टू सफलता।
ये उस कन्वर्जेंस मॉडल का निचोड़ है।
हाँ, या फिर वो एक्शन वाली, योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि वे तुरंत कड़ी मेहनत में ना बदल जाएं।
सीधी चोट करती है ये लाइन तो।
और एक और है, स्वतंत्रता मुफ्त नहीं है, लेकिन आप इस पर खर्च ना किए गए हर पैसे के लायक हैं।
मतलब समय और अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पैसों से ज्यादा कीमती है।
बिल्कुल,
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों को कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ, सोचो जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई अपनी नौकरी से खुश नहीं है।
हाँ।
तो वो एकदम से नौकरी छोड़ने के बजाय वीकेंड पर या खाली समय में छोटे लेवल पर अपना आइडिया टेस्ट कर सकता है।
जैसे?
जैसे कोई अच्छा खाना बनाता है तो वो पहले सिर्फ दोस्तों और पड़ोसियों के लिए वीकेंड पर कुछ स्पेशल बनाकर देखे, फीडबैक ले।
हाँ, देखे कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं, पैसे देने को तैयार हैं या नहीं।
बिल्कुल, डिमांड बढ़े तो धीरे धीरे आगे बढ़े, रिस्क कम रहता है इसमें।
और वो आय के कई स्रोत बनाने वाला विचार भी अच्छा है।
हाँ, बहुत काम का है। हो सकता है नौकरी के अलावा आपके पास कोई और हुनर हो, आप अच्छा लिखते हो, डिजाइन करते हो या किसी चीज के एक्सपर्ट हो। तो आप छोटी मोटी कंसल्टिंग सर्विस दे सकते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप कर सकते हैं, फ्रीलांस काम पकड़ सकते हैं।
तो एक बड़ी सैलरी पर निर्भर रहने से बेहतर है आय के 3-4 छोटे छोटे स्रोत होना।
हाँ, ये ज्यादा सुरक्षा देता है, ऐसा कई लोग मानते हैं।
और वो एक्शन ओवर एनालिसिस वाला सिद्धांत,
वो तो कहीं भी लग सकता है।
कहीं भी, कोई नई भाषा सीखनी हो, वजन कम करना हो, कोई नया शौक अपनाना हो, ज्यादा सोचने के बजाय बस पहला छोटा कदम उठाना।
हाँ, शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है अक्सर।
यहाँ तक कि जो लोग नौकरी में हैं और खुश हैं, वो भी इस सोच को अपना सकते हैं, इंट्राप्रेन्योर बनकर।
इंट्राप्रेन्योर मतलब कंपनी के अंदर ही उद्यमी।
हाँ, अपनी कंपनी में ही समस्याओं को पहचानना, उनके समाधान के लिए नए आइडिया लाना, पहल करना, ये भी तो एक तरह की उद्यमशीलता ही है।
सही बात है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे अहम टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि उद्यमिता उतनी डरावनी या मुश्किल नहीं है जितना हम अक्सर सोचते हैं, खासकर अगर हम छोटे और स्मार्ट तरीके से शुरुआत करें। और ये कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो आजादी और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना है, ये नजरिया मुझे काफी ताजगी भरा लगा।
हाँ, ये अलग है।
और वो रेडी फायर एम वाला आइडिया भी, मतलब परफेक्शन को छोड़कर एक्शन पर फोकस करना, ये थोड़ा हिम्मत देता है।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असरदार रही वो ये जानना कि कैसे इतने सारे साधारण लोग,
हाँ,
बिना किसी खास बैकग्राउंड के, बिना भारी भरकम निवेश के, अपने हुनर और जुनून को सच में एक चलते हुए बिजनेस में बदल पाए। वो 1500 लोगों का सर्वे, 50 केस स्टडीज, ये बताते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, हकीकत है।
हाँ, ये बहुत हौसला देता है।
और वो मूल्य बनाने पर जो जोर है कि बिजनेस का असली मकसद दूसरों की मदद करना है, उनकी जरूरत पूरी करना है, ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी।
हाँ, वाकई ये किताब एक तरह से हिम्मत देती है कि शुरुआत करने के लिए किसी बड़े मौके या ढेर सारे पैसों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल। तो अपने श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ।
आपके पास ऐसा कौन सा हुनर, जुनून या आइडिया है जो किसी और की जरूरत पूरी कर सकता है?
सोचने वाली बात है।
और उस आइडिया को परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, आप आज ही कौन सा एक छोटा सा शायद $100 से भी कम लागत वाला कदम उठा सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।